महारास। श्री शुकुवाच इत्थं भगवतो गोप्य श्रुत्वा वाच सुपेशलाः जहुर्विरहजं तापं तदंगोपचिताशिषः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, गोपियां भगवान के इस प्रकार प्रेम भरी सुमधुर वाणी सुनकर जो कुछ विरहजन्य ताप शेष था उससे भी मुक्त हो गई और सौंदर्य माधुर्य निधि प्राण प्यारे के अंग संग से सफल मनोरथ हो गई। तत्रारभत गोविंदो रास क्रीड़ा मनुव्रतैः स्त्री रत्नैरन्वितः प्रीतैरन्योन्याबद्ध बाहुभिः। भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी और सेविका गोपियां एक दूसरे की बाह में बाह डाले खड़ी थी। उन स्त्री रत्नों के साथ यमुना जी के पुलीन पर भगवान ने अपनी रसमयी रास क्रीड़ा प्रारंभ की। रासो सब संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडितः योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयो द्वयो प्रविष्टेन गृहीतानां कंठे स्वनिकटं श्रियः। यम मंडेरन्नभस्तावद्विमान सतसंकुलं दिवौकसां सदाराणां औत्सुक्या प्रहितात्मनाम्। संपूर्ण योगों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण दो दो गोपियों के बीच में प्रकट हो गए और उनके गले में अपना हाथ डाल दिया। इस प्रकार एक गोपी और एक श्री कृष्ण, यही क्रम था। सभी गोपियां ऐसा अनुभव करती थी कि प्यारे श्री कृष्ण तो हमारे ही पास हैं। इस प्रकार सहस्त्र सहस्त्र गोपियों से शोभायमान भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रथ उत्सव प्रारंभ हुआ। उस समय आकाश में शत शत विमानों की भीड़ लग गई। सभी देवता अपने अपने पत्नियों के साथ वहां आ पहुँचे। रसोत्सव के दर्शन की लालसा से उत्सुकता से उनका मन उनके वश में नहीं था। ततो दुन्दुभयो दुर्निपेतो पुष्पवृष्टयः जगुर्गन्धर्वपतयः सस्त्रीकास्तद्यशोमलम्। स्वर्ग की दिव्य दुन्दुभियां अपने आप बज उठी। स्वर्गीय पुष्पों की वर्षा होने लगी। गंधर्वगण अपनी अपनी पत्नियों के साथ भगवान के निर्मल यश का गान करने लगे। वलयानां नुपुराणां किंकणीनां च योषितां सप्रियाणां अभुच्छब्द तुमलो रासमंडले। रासमंडल में सभी गोपियां अपने प्रियतम श्याम सुंदर के साथ नृत्य करने लगी। उनकी कलाइयों के कंगन, पैरों के पायजेब और करधनी के छोटे छोटे घुंघरू एक साथ बज उठे। असंख्य गोपियां थी, इसीलिए यह मधुर ध्वनि भी बड़े ही जोरों की हो रही थी। तत्राते सुशुभेता भीर भगवान देवकी सुतः मध्य मणि नाम है मानाम महामरकतो यथा। यमुना जी की रमण रीति पर व्रज सुंदरियों के बीच में भगवान श्री कृष्ण बड़ी अनोखी शोभा हुई। ऐसा जान पड़ता था मानो अगणित पीली पीली दमकती हुई सुवर्ण मणियों के बीच में ज्योतिर्मयी नील मणि चमक रही हो। पादन्यास भुजा विद्युत स्मित भूविलास भजन मध्य चल कुछ पटे कुंडल गंडलोल सिद्धन मुख्य कबर रसना ग्रंथय कृष्ण बद्धो गायन्त्यस्तं तडित इव तांबे गतक्रे विरेजुहु। नृत्य के समय गोपियां तरह तरह से ठुमक ठुमक कर अपने पांव कभी आगे बढ़ाती और कभी पीछे हटा लेती। कभी गति के अनुसार धीरे धीरे पांव रखती तो कभी बड़े वेग से, कभी चाक की तरह घूम जाती, कभी अपने हाथ उठा उठा कर भाव बताती तो कभी विभिन्न प्रकार से उन्हें चमकाती, कभी बड़े कलापूर्ण ढंग से मुस्कुराती, तो कभी भौहें मटकाती। नाचते नाचते उनकी पतली कमर ऐसी लचक जाती थी मानो टूट गई हो। झुकने बैठने उठने और चलने की फुर्ती से उनके स्तन हिल रहे थे तथा वस्त्र उड़े जा रहे थे। कानों के कुंडल हिल हिल कर कपोलों पर आ जाते थे। नाचने के परिश्रम से उनके मुंह पर पसीने की बूंदें झलकने लगी थी। केसों की चोटियां कुछ ढीली पड़ गई थी। निवि की गांठें खुली जा रही थी। इस प्रकार नटवर नंदलाल की परम प्रेयसी गोपियां उनके साथ गा गा कर नाच रही थी। परीक्षित, उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो बहुत से श्री कृष्ण तो सांवले सांवले मेघ मंडल हैं और उनके बीच बीच में चमकती हुई गोरी गोपियां बिजली हैं। उनकी शोभा असीम थी। उच्च जगृ नृत्यमाना रक्त कंठोरति प्रिया कृष्णाभिमर समुदिता यज्ञेते नेदमावृतम्। गोपियों का जीवन भगवान की रति है, प्रेम है। वे श्री कृष्ण से सटकर नाचते नाचते ऊंचे स्वर से मधुर गान कर रही थी। श्री कृष्ण का संस्पर्श पा पाकर और भी आनंद मग्न हो रही थी। उनके राग रागनियों से पूर्ण गान से यह सारा जगत अब भी गूंज रहा है। काचि समम मुकुंदेन स्वर जातिरमिष्ठता उनन्ते पूजिता तेन प्रियता साधु साध्विति तदेव ध्रुमृन्दिन्दे तस्मै मानम च बल्लदात। कोई गोपी भगवान के साथ उनके स्वर में स्वर मिलाकर गा रही थी। वह श्री कृष्ण के स्वर की अपेक्षा और भी ऊंचे स्वर से राग अलापने लगी। उसके विलक्षण और उत्तम स्वर को सुनकर वे बहुत ही प्रसन्न हुए और वाह वाह करके उसकी प्रशंसा करने लगे। उसी राग को एक दूसरी सखी ने ध्रुपद में गाया। उसका भी भगवान ने बहुत सम्मान किया। काचिद्रास परिश्रांता पार्श्वस्थस्य गदाभृतः जग्राह बाहुना स्कंधम श्लथध्वलय मल्लिका। एक गोपी नृत्य करते करते थक गई। उसके कलाइयों से कंगन और चोटियों से वेला के फूल खिसकने लगे। तब उसने अपने बगल में ही खड़े मुरली मनोहर श्याम सुंदर के कंधों को अपने बाहों से कसकर पकड़ लिया। तत्रैकांसगतं बाहुं कृष्णस्योत्पल सौरभम चंदनालिप्तमाघ्राय हृष्टरोमाचुचुम्ब। भगवान श्री कृष्ण ने अपना एक हाथ दूसरी गोपी के कंधे पर रख रखा था। वह स्वभाव से तो कमल के समान सुगंध से युक्त था ही। उस पर बड़ा सुगंधित चंदन का लेप भी था। उसके सुगंध से वह गोपी पुलकित हो गई। उसका रोम रोम खिल उठा। उसने झट से उसे चूम लिया। कस्याचिन्नाट्य विक्षिप्त कुंडल समंडितम गंडम गंडे संधत्या अदाताम्बूल चर्भितम। एक गोपी नृत्य कर रही थी। नाचने के कारण उसके कुंडल हिल रहे थे। उनकी छटा से उसके कपोल और भी चमक रहे थे। उसने अपने कपोलों को भगवान श्री कृष्ण के कपोल से सटा दिया और भगवान ने उसके मुंह में अपना चबाया हुआ पान दे दिया। नृत्यन्ति गायति काचित् कुजन्नुपुर मेखला पार्श्वस्थाच्युत हस्ताब्जम शांताधास्तनयो शिवम्। कोई गोपी नुपुर और करधनी के घुंघरुओं को झनकारती हुई नाच और गा रही थी। वह जब बहुत थक गई तब उसने अपने बगल में ही खड़े श्याम सुंदर के शीतल कर कमलों को अपने दोनों स्तनों पर रख लिया। गोप्यो लब्ध्वात्युतम कांतम से एकांत वल्लभम गृहीत कंठस्तद्दोर्भ्याम गायन्त्यस्तम विजक्रिरे। परीक्षित, गोपियों का सौभाग्य लक्ष्मी जी से भी बढ़कर है। लक्ष्मी जी के परम प्रियतम एकांत वल्लभ भगवान श्री कृष्ण को अपने परम प्रियतम के रूप में पाकर गोपियां गान करती हुई उनके साथ विहार करने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने उनके गलों को अपने भुज पास में बांध रखा था। उस समय गोपियों की बड़ी अपूर्व शोभा थी।
कर्णोत्पलालक विटंक कपोल धर्म वक्त्रश्रियो वेणुपुर घोषवाद्ययी गोप्य समं भगवता नृतो स्वकेश स्रस्तस्रजो भ्रमर गायक रास गोष्ठ्याम।
उनके कानों में कमल के कुंडल शोभायमान थे। घुंघराली अलके कपोलों पर लटक रही थी। पसीने की बूंदें झलकने से उनके मुख की छटा निराली हो रही थी। वे रास मंडल में भगवान श्री कृष्ण के साथ नृत्य कर रही थी। उनके कंगन और पायजेबों के बाजे बज रहे थे। भौरे उनके ताल सुर में अपना सुर मिलाकर गा रहे थे और उनके जूड़ों तथा चोटियों में गुथे हुए फूल गिरते जा रहे थे।
एवं परिस्वंग कराभिमर्श स्निग्धे क्षणोद्दाम अभिलाष हासै द्रेबे रबे सो ब्रज सुंदरे भी यथार्भक स्व प्रतिबिंब विभ्रम।
परीक्षित, जैसे नन्हा सा शिशु निर्विकार भाव से अपनी परछाई के साथ खेलता है, वैसे ही रमा रमण भगवान श्री कृष्ण कभी उन्हें अपने हृदय से लगा लेते, कभी हाथ से उनका अंग स्पर्श करते, कभी प्रेम भरी तिरछी चितवन से उनकी ओर देखते तो कभी लीला से उन्मुक्त हंसी हंसने लगते। इस प्रकार उन्होंने ब्रज सुंदरियों के साथ क्रीड़ा की विहार किया।
तदंग संग प्रमुदा कुलेन्द्रिया केशानुकूलम कुछ पट्टिकाम नांज प्रतिव्योढ़ुमलम ब्रज स्त्रियो विश्रस्त माला भरणा कुरुद्व।
परीक्षित, भगवान के अंगों का संस्पर्श प्राप्त करके गोपियों की इंद्रियां प्रेम और आनंद से विवल हो गई। उनके केश बिखर गए, फूलों के हार टूट गए और गहने अस्त व्यस्त हो गए। वे अपने केश वस्त्र और कंचुकी को भी पूर्णतया संभालने में असमर्थ हो गई।
कृष्ण विक्रीडितं व्यच्छ मुहुमुहु खेचर स्त्रियः कामार्जिता शशांकश्च सगणो विस्मितो भवत।
भगवान श्री कृष्ण की यह रास क्रीड़ा देखकर स्वर्ग की देवांगनाएं भी मिलन की कामना से मोहित हो गई और समस्त तारों तथा ग्रहों के साथ चंद्रमा चकित विस्मित हो गए।
कृत्वा तावन्तमात्मानं यावतिर्गोपयोषितः रेमे स भगवान साभिर आत्मा रामोऽपि लीलया।
परीक्षित, यद्यपि भगवान आत्मा राम है, उन्हें अपने अतिरिक्त और किसी की भी आवश्यकता नहीं है, फिर भी उन्होंने जितनी गोपियां थी उतनी ही रूप धारण किए और खेल खेल में उनके साथ इस प्रकार विहार किया।
तासा मति विहारेण शांतानां वदनानि सह प्रामृजत करुण प्रेमना संतमेनांग पाणिनां।
जब बहुत देर तक गान और नृत्य आदि विहार करने के कारण गोपियां थक गई, तब करुणामय भगवान श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से स्वयं अपने सुखद कर कमलों के द्वारा उनके मुंह पोछे।
गोप्य स्फुरत पुरट कुंडल कुंतल द्वेन गंडश्रिया सुधित हास निरीक्षण मानम दधत ऋषभस्य जगुकृतानि पुण्यानि तत्कर रूप स्पर्शम प्रमोदा।
परीक्षित, भगवान के कर कमल और नख स्पर्श से गोपियों को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने अपने उन कपोलों के सौंदर्य से, जिन पर सोने के कुंडल झिलमिला रहे थे और घुंघराली अलके लटक रही थी, तथा उस प्रेम भरी चितवन से जो सुधा से भी मीठी मुस्कान से उज्जवल हो रही थी, भगवान श्री कृष्ण का सम्मान किया और प्रभु की परम पवित्र लीलाओं का गान करने लगी। ताभिर्युत श्रमपमपोहितुमंग संग घृष्टस्रज सकुच कुंकुमरंजिताया गंधर्व पालभिरनुद्रुतम आविशद्वा श्रांतो गजेभिरभिरा दिव भिन्न सेतु।
इसके बाद जैसे थका हुआ गजराज किनारों को तोड़ता हुआ हथनियों के साथ जल में घुसकर क्रीड़ा करता है, वैसे ही लोक और वेद की मर्यादा का अतिक्रमण करने वाले भगवान ने अपनी थकान दूर करने के लिए गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने के उद्देश्य से यमुना के जल में प्रवेश किया। उस समय भगवान की वनमाला गोपियों के अंग की रगड़ से कुछ कुचल सी गई थी और उनके वक्षस्थल की केसर से वह रंग भी गई थी। उसके चारों ओर गुनगुनाते हुए भौरे उनके पीछे पीछे इस प्रकार चल रहे थे मानो गंधर्वराज उनकी कीर्ति का गान करते हुए पीछे पीछे चल रहे हों।
सोमस्यलम युवति परिसिच्यमारः प्रेमणे क्षित प्रहसति भृतस्ततोऽङ्गः वैमानिकैकुसुम वर्षभिरीड्यमानो रेवे स्वयं स्वरतिरत्र गजेन्द्रलीलः।
परीक्षित, यमुना जल में गोपियों ने प्रेम भरी चितवन से भगवान की ओर देख देख कर तथा हंस हंस कर उन पर इधर उधर से जल की खूब बौछारें डाली। जल उलीच उलीच कर उन्हें खूब नहलाया। विमानों पर चढ़े हुए देवता पुष्पों की वर्षा करके उनकी स्तुति करने लगे। इस प्रकार यमुना जल में स्वयं आत्माराम भगवान श्री कृष्ण ने गजराज के समान जल विहार किया।
ततस्य कृष्णो पवने जलस्थल प्रसून गंधा नीलजुष्ट दीप्तटे चचार भृंग प्रमदा गणावृतो यथा मदच्युद करेणु भी।
इसके बाद भगवान श्री कृष्ण व्रज ज्योतियों और भौरों की भीड़ से घिरे हुए यमुना तट के उपवन में गए। वह बड़ा ही रमणीय था। उसके चारों ओर जल और स्थल में बड़ी सुंदर सुगंध वाले फूल खिले हुए थे। उनकी सुवास लेकर मंद मंद वायु चल रही थी। उसमें भगवान इस प्रकार विचरण करने लगे जैसे मदमत्त गजराज हथनियों के झुंड के साथ घूम रहे हों।
एवं शशांकांश विराजिता निशा ससत्य कामो नुरता बला गण सिसेव आत्मन्यवरुद्ध सौरतः सर्वा सरद काव्य कथा रसाश्रया।
परीक्षित, शरद की वह रात्रि जिसके रूप में अनेक रात्रियां पूंजीभूत हो गई थी बहुत ही सुंदर थी। चारों ओर चंद्रमा की बड़ी सुंदर चांदनी छिटक रही थी। काव्यों में शरद ऋतु के जिन रस सामग्रियों का वर्णन मिलता है उन सभी से वह युक्त थी। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रेसी गोपियों के साथ यमुना के पुलीन यमुना जी और उनके उपवन में विहार किया। यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि भगवान सत्य संकल्प हैं। यह सब उनके चिन्मय संकल्प की ही चिन्मयी लीला है और उन्हीं से इस लीला में काम भाव को उसकी चेष्टाओं को तथा उसकी क्रिया को सर्वथा अपने अधीन कर रखा था, उन्हें अपने आप में कैद कर रखा था।
राजोवाच संस्थापनाय धर्मस्य प्रसमायेतरस्य च अवतीर्णो हि भगवानंसेन जगदीश्वरः।
राजा परीक्षित ने पूछा, भगवन, भगवान श्री कृष्ण सारे जगत के एकमात्र स्वामी हैं। उन्होंने अपने अंश श्री बलराम जी के सहित पूर्ण रूप में अवतार ग्रहण किया था। उनके अवतार का उद्देश्य ही यह था कि धर्म की स्थापना हो और अधर्म का नाश।
स कथम धर्म से तो नाम वक्ता कर्ता भिरक्षिता प्रतीप माचरत ब्रह्मन पर दारा विमर्शनम।
ब्रह्मन, वे धर्म मर्यादा के बनाने वाले उपदेश करने वाले और रक्षक थे, फिर उन्होंने स्वयं धर्म के विपरीत पर स्त्रियों का स्पर्श कैसे किया।
आप्त कामो यदुपते कृतवान् वै जुगुप्सितम् किमभिप्राय एतम् न संशयम् छिन्दि सुव्रत।
मैं मानता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण काम थे, उन्हें किसी भी वस्तु की कामना नहीं थी, फिर भी उन्होंने किस अभिप्राय से यह निंदनीय कर्म किया। परम ब्रह्मचारी मुनीश्वर आप कृपा करके मेरा यह संदेह मिटाइए।
श्री सुखवाच धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणां च साहसम् तेजीयसाम न दोषाय वंदे सर्वभुजो यथा।
श्री सुखदेव जी कहते हैं, सूर्य अग्नि आदि ईश्वर समर्थ कभी कभी धर्म का उल्लंघन और साहस का काम करते देखे जाते हैं, परंतु उन कामों से उन तेजस्वी पुरुषों को कोई दोष नहीं होता। देखो, अग्नि सब कुछ खा जाता है, परंतु उन पदार्थों के दोष से लिप्त नहीं होता।
नहि तत्समाचरे जातु मनसापि हनीश्वरः विनश्यत्याचरन् मौढ्यान् यथा रुद्रोऽब्धिजं विषम्।
जिन लोगों में ऐसी सामर्थ्य नहीं है, उनमें उन्हें मन से भी वैसी बात कभी नहीं सोचनी चाहिए। शरीर से करना तो दूर रहा, यदि मूर्खतावश कोई ऐसा काम कर बैठे तो उसका नाश हो जाता है। भगवान शंकर ने हलाहल विष पी लिया था, दूसरा कोई पिए तो वह जलकर भस्म हो जाएगा।
ईश्वराणां वच सत्यं तथैवाचरितं क्वचेन् तेषां यस्व वचो युक्तं बुद्धिमान् तत्समाचरेत्।
इसलिए इस प्रकार के जो शंकर आदि ईश्वर हैं, अपने अधिकार के अनुसार उनके वचन को ही सत्य मानना और उसी के अनुसार आचरण करना चाहिए। उनके आचरण का अनुकरण तो कहीं कहीं ही किया जाता है, इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि उनका जो आचरण उनके उपदेश के अनुकूल हो, उसी को जीवन में उतारे।
कुशलाचरते नहि साम्यः स्वार्थो न विद्यते विपर्ययेन वा नरथो निरहंकारिणां प्रभो।
परीक्षित, वे सामर्थ्यवान पुरुष अहंकारहीन होते हैं, शुभ कर्म करने में उनका कोई सांसारिक स्वार्थ नहीं होता और अशुभ कर्म करने में अनर्थ अर्थात नुकसान नहीं होता। वे स्वार्थ और अनर्थ से ऊपर उठे होते हैं।
किमुता अखिल सत्वानां तिर्यक्मर्त्य दिवोकसाम इसतुष्येषितव्यानां कुशला कुशलान्वयः।
जब उन्हीं के संबंध में ऐसी बात है, तब जो पशु पक्षी मनुष्य देवता आदि समस्त चराचर जीवों के एकमात्र प्रभु सर्वेश्वर भगवान है, उनके साथ मानवीय शुभ और अशुभ का संबंध कैसे जोड़ा जा सकता है।
यत् पाद पंकज परागण सेव तृप्ता योग प्रभाव विद्युता अखिल कर्म बंधा स्वैरं त्यनन्ति मनयोऽपि न नय्यमाना तस्येच्छया त्वपुत कुत एव बन्ध।
जिनके चरण कमलों के रज का सेवन करके भक्तजन तृप्त हो जाते हैं, जिनके साथ योग प्राप्त करके उसके प्रभाव से योगी जन अपने सारे कर्म बंधन काट डालते हैं और विचारशील ज्ञानी जन उनके तत्व का विचार करके तत्स्वरूप हो जाते हैं तथा समस्त कर्म बंधनों से मुक्त होकर स्वच्छंद विचरते हैं। वे ही भगवान अपने भक्तों की इच्छा से अपना चिन्मय श्री विग्रह प्रकट करते हैं, तब भला उसमें कर्म बंधन की कल्पना ही कैसे हो सकती है।
गोपीनां तत्पतीनां च सर्वेषामेव देहिनां योऽन्तश्चरति सोऽध्यक्ष क्रीडने देह देह भाग।
योगियों के, उनके पतियों के और संपूर्ण शरीरधारियों के अंतःकरणों में जो आत्मा रूप से विराजमान है, जो सबके साक्षी और परमपति हैं, वही तो अपना दिव्य चिन्मय श्री विग्रह प्रकट करके यह लीला कर रहे हैं।
अनुग्रहाय भूतानां मानसं देहमास्थितः भजते तादृशी क्रीडाया श्रुत्वा तत्परो भवेत्।
भगवान जीवों पर कृपा करने के लिए ही अपने को मनुष्य रूप में प्रकट करते हैं और ऐसी लीलाएं करते हैं जिन्हें सुनकर जीव भगवत परायण हो जाए।
नासूयन खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य मायया मन्यमाना स्वपार्श्वस्थान स्वान स्वान दारान ब्रजौकस।
ब्रजवासी गोपों ने भगवान श्री कृष्ण में तनिक भी दोष बुद्धि नहीं की। वे उनकी योग माया से मोहित होकर ऐसा समझ रहे थे कि हमारी पत्नियां हमारे पास ही है।
ब्रह्मरात्रपावृत्ते वासुदेवानुमोदिता अनिच्छत्यो ययुर्गोप्य स्वगृहान भगवत प्रिया।
ब्रह्मा की रात्रि के बराबर वह रात्रि बीत गई। ब्राह्म मुहूर्त आया। यद्यपि गोपियों की इच्छा अपने घर लौटने की नहीं थी, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से वे अपने अपने घर चली गई, क्योंकि वे अपनी प्रत्येक चेष्टा से प्रत्येक संकल्प से केवल भगवान को ही प्रसन्न करना चाहती थी।
विक्रीडितं ब्रजवधो बिरदं च विष्णो श्रद्धान्वितोऽनुशृणु यादथ वर्णये दयः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं रुद्रोगमास्व कहिलोऽस्य चिरेण धीरः।
परीक्षित, जो धीर पुरुष ब्रज युवतियों के साथ भगवान श्री कृष्ण के इस चिन्मय रास विलास का श्रद्धा के साथ बार बार श्रवण और वर्णन करता है, उसे भगवान के चरणों में पराभक्ति की प्राप्ति होती है और वह बहुत ही शीघ्र अपने हृदय के रोग काम विकार से छुटकारा पा जाता है। उसका काम भाव सर्वदा के लिए नष्ट हो जाता है। इति रास क्रीड़ा वर्णनम।